नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। एक ऐसा पर्व जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलने के लिए प्रेरित करता है, एक ऐसा पर्व जो सही अर्थों में हमारे जीवन को आनंद से परिपूर्ण करता है, एक ऐसा पर्व जो हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाता है। वास्तव में शिवरात्रि पर्व के बहुत सारे आध्यात्मिक रहस्य हैं। हम सब चाहेंगे कि परमात्मा शिव के बारे में हम सब कुछ जानें, सब कुछ समझें, क्योंकि आज उन्हीं का तो चिंतन करना है, उन्हीं का मनन करना है, उन्हीं का ध्यान करना है, और उनके ध्यान से ही वास्तव में हमारे सारे कलह क्लेश नष्ट होंगे। कहते हैं कि जो परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा का आशीष उन्हें प्राप्त होता है। तो आइए इस भगवत भक्ति में, इस भगवत चर्चा में पुनः हम शामिल हों और आध्यात्मिक रहस्यों को जानने की कोशिश करें। आदरणीय भ्राता जी के साथ उनका स्वागत प्रथमतः करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
संसार के सभी भाई बहनों को इस सुंदर पर्व पर, मैं इसको अति सुंदर कहूंगा, सभी को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। सुंदर इसलिए कि यही एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग रात को जागकर शिव के आने की इंतजार करते हैं कि वो आएगा जरूर, वो हमसे मिलेगा जरूर। तो इसलिए ये पर्व सब पर्वों में अनुपम हो जाता है। बाकी किसी पर्व में उसके आने की इंतजार नहीं करते। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे तो ठीक है, उसने जन्म लिया था। राखी का त्योहार मना रहे तो राखी बांध रहे हैं, या दिवाली मना रहे तो दीप जला रहे हैं। इसमें शिव के आगमन की इंतजार। तो मैं तो ये चाहूंगा कि हमारे सभी भाई बहने जान लें कि शिव तुमसे मिलने आ गया है, तुम मिलो बस।
बिल्कुल, शिव जयंती भी हम इसे कहते हैं। तो क्या वैसा ही जन्म परमात्मा का होता है या कोई दिव्य जन्म?
हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तो शिवरात्रि को शिव जयंती ही कहते हैं, और साथ में 78वीं शिव जयंती हम मना रहे हैं। तो लोग पूछते हैं 78वीं क्यों? शिव तो सदा से ही है, तो 78वीं जन्म के, उसने जन्म लिया थोड़ा है, वो तो जन्म मन से न्यारा है। नो डाउट, ये सत्य है कि शिव निराकार है, अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता। लेकिन उसके अवतरण को उसका दिव्य जन्म भी कहा जाता है, जैसा उसने अपना वायदा किया है कि मैं आऊंगा, मेरा जन्म मनुष्यों की तरह नहीं, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक होता है। तो परमात्मा शिव आते हैं और ब्रह्मातन में प्रवेश करते हैं, उसके इस अवतरण को हम जन्म कहते हैं उसका। इसीलिए हम उनकी जयंती मनाते हैं कि 78 साल पहले परमात्मा से इस धरा पर आए थे ब्रह्मा के तन में, 78 साल पूर्ण किए हैं उन्होंने अपना दिव्य कार्य करते हुए। एक एक की पालना की है उन्होंने, एक एक को भक्ति का फल दिया है उन्होंने, सभी को उन्होंने सत्य ज्ञान दिया है, राजयोग के गुह्य रहस्य समझाए हैं, ईश्वर श्री चक्र के आदि मध्य अंत के संपूर्ण जो गुह्यतम रहस्य हैं वो स्पष्ट किए हैं। तो वास्तव में इसलिए हम उसके अवतरण को शिव जयंती कह देते हैं। और एक सुंदर बात यह है कि उसकी शिव जयंती हमारी शिव जयंती भी है, क्योंकि वो आया और हमने भी जन्म लिया। तो एक तरह से बाप और बच्चों का जन्म एक ही साथ हो गया है, ये इसमें अनुपमता है। और ये जन्म दोनों ही अलौकिक हैं, हम भी बड़े थे, हम शूद्र से ब्राह्मण बने, ये हमारा अलौकिक जीवन, और निराकार शिव ब्रह्मलोक से आकर ब्रह्मातन में प्रविष्ट हुए, वो उनका दिव्य जन्म।
एक नई बात भ्राता जी आपने कही है। वैसे भी ब्रह्मा कुमारी उस शिव जयंती को इतने धूमधाम से मनाते हैं, कहीं पे भी देश में हो या विदेश में हो, ऐसा लगता है कि जैसे सचमुच एक दिवाली का पर्व है, चारों तरफ इतनी सारी सुंदर लड़ियां लगी हुई होती हैं और बहुत धूमधाम से सभी संदेश देते हैं। मन में यही प्रश्न उठ रहा था जो आपने बता ही दिया कि क्यों ब्रह्मा कुमारियां इतने धूमधाम से शिवरात्रि या शिव जयंती को मनाती हैं।
बहुत सारे सेवा के प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं, किए जा रहे हैं, और हफ्ता 10 दिन ये सब जगह हमारे यहाँ प्रोग्राम चलेगा। तो हमारे लक्ष्य होगा कि हम शिव के सभी भक्तों को शिव के बच्चे बना दें, हम शिव के सभी भक्तों को शिव से मिला दें, उन्हें मिलन का मार्ग दिखा दें, और इस कार्य में हम बहुत सफल हो रहे हैं। तो ये कार्य आप जो शिवरात्रि के 5-7 दिन पहले से 5-7 दिन बाद तक बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है, केवल मनाने के लिए नहीं लेकिन मनुष्यों को जगाने के लिए।
बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात रहेगी भ्राता जी की, अब तक मनाते रहे हैं लेकिन अब जागें और वास्तव में परमात्मा शिव हमसे क्या क्या चाहते हैं वो हम करें, क्योंकि सदियों से ये बात कही जाती रही है कि हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। तो आज भ्राता जी मैं जानना चाहूंगा कि भगवान की हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, वो आकर के, जैसे आपने पिछली कड़ी में भी कहा कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब स्वयं परमात्मा शिव आ गए हैं, अब इस रात्रि में मिलन की एक सुंदर वेला है आत्मा और परमात्मा का, परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं, क्या संदेश दे रहे हैं?
तुम मेरे बच्चे हो, भक्त नहीं हो, तुम मेरे हो। यही ईश्वरीय खुमारी है कि भगवान हमारा और हम उसके, यही वो नशा है जिसको भक्तगण दूसरे रूप में स्वीकार कर रहे हैं। और उनका ये संदेश है, उनकी ये शुभकामना है कि हम पवित्र आए थे फिर अपवित्र बन गए, इन मनोविकारों ने हमारी सुख शांति चैन को छीन लिया है, हमें सिरताज से मोहताज बना दिया, हम तो संपन्न थे बादशाह थे कंगाल बना दिया, अब इन मनोविकारों को छोड़कर उनका आदेश है बच्चे पवित्र बन जाओ। उनका आदेश है तुमने जो जन्म जन्म विकर्म किए हैं, पाप कर्म तुमसे हुए हैं अज्ञानवश, अब तुम मेरे से योग युक्त हो जाओ तो इस योग अग्नि में वो तुम्हारे सारे विकर्म जलकर नष्ट हो जाएं, तुम बिल्कुल स्वच्छ होकर घर वापिस चलो। तो उसका यह पैगाम है संसार की सभी आत्माओं के लिए, सभी धर्मों की आत्माओं के लिए, कि अब रिटर्न जर्नी का समय आ गया है, जहां से हम आए थे वहीं जाने का समय आ गया है, हमें देह देह के संबंध और ये सारा संसार जो दृश्यमान है इसे छोड़कर आत्मा बनकर रूह बनकर वापिस अपने घर जाना है। तो संदेश दे रहे हैं जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हें लेने आ गया हूं लेकिन तुम्हें जाना होगा पवित्र बनकर।
मतलब अब हमें तैयार होना होगा कि अब हमें चलना है सृष्टि से, लेकिन इच्छा तो होती है भ्राता जी कि हम यहीं रहें, यहीं आनंद लें।
मनुष्य रहना तब चाहता है जब सुख शांति हो, चैन हो, प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति बड़ी सद्भावनाएं हो, जीने का मन करे। आज तो लोग जीने का मन ही नहीं कर बना रहे हैं, जल्दी मरे, हे प्रभु जी जल्दी उठा लो, आयु बढ़ गई तो बीमारियां बढ़ रही हैं और समस्याएं हो रही
हैं। लेकिन जाने के लिए तैयार
जाने के लिए
होते
हैं, लेकिन इस सृष्टि में एक क्रम है, जब सृष्टि का अंत आता है, कलयुग का अंत आता है, तो सभी आत्माओं को मुक्ति धाम में जाना ही होता है, क्योंकि मुक्ति को प्राप्त करना उनकी एक श्रेष्ठ इच्छा रही होती है, परमात्मा ये भी सबकी श्रेष्ठ इच्छा पूरी कर देते हैं।
इसीलिए शायद उनको मुक्तेश्वर कहा जाता है, महाकाल कहा जाता है, कि जब वो आते हैं तो सभी को वापस लेकर जाते हैं और जाने के बाद फिर से वापस भेजते हैं, क्योंकि नूतन सृष्टि की भी स्थापना, जैसे कल आप कह रहे थे कि वास्तव में नूतन सृष्टि की भी स्थापना वो करते हैं। दादा जी विशेष करके जब हम भक्ति मार्ग में, मतलब जो भी आज भक्तगण है, शिवलिंग के ऊपर कई प्रकार की चीजें चढ़ाते हैं, आग का फूल है जो और किसी देवता के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, धतूरा है वो आते हैं, बेलपत्र हैं वो चढ़ाया जाता है, तो क्या इन सब चीजों का जो हम शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं इनका भी कोई आध्यात्मिक भाव?
बिल्कुल, परमात्मा शिव तो हमारे बहुत प्यारे परम पिता हैं, वो हमें सुखी देखना चाहते हैं, वो हमें पावन बनाना चाहते हैं, वो हमें बहुत आनंदित सदा खुशी से चमकते हुए चेहरे वाले देखना चाहते हैं। इसलिए उनका आदेश है तुम्हारे अंदर जो बुराइयां हैं
जी,
ये सब अक धतूरा ये सब बुराई के प्रतीक हैं, ये तुम मेरे पर अर्पित कर दो, मुझे दे दो, तुम स्वच्छ हो जाओ तो तुम्हारा जीवन खुशहाली से भरपूर हो जाएगा। इसलिए लोगों ने भक्ति में ये उस पर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया।
मतलब
जो भी चीजें उस पर चढ़ाई जाती हैं उनका रहस्य है कि अपने अंदर जो बुराइयां हैं वो सब तुम उस पर चढ़ा दो।
और भ्राता जी आज के दिन विशेष करके ये भी कहा जाता है कि जो शंकर जी हैं वो भांग पीते हैं या इस प्रकार की जो नशीली चीजें हैं वो लेते हैं और बिल्कुल आनंदित रहते हैं, तो वो देख करके भक्तगण भी आज कई प्रकार की जो चीजें हैं उनका सेवन करते हैं, भांग है आदि आदि है, क्या मतलब शंकर जी ये चीजें लिया करते थे और क्या ये भक्तों को भी करना?
ये बहुत बड़ी गलती हो गई, अपने पूज्य और सम्माननीय देवताओं की ग्लानी हो गई
जी।
आज भी कोई भांग धतूरा खाए लोग उसे रोकते हैं, तो वहाँ लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, नशा तो बुरा माना जाता है, भला हमारे आदर्श जो देवी देवता हैं, जो महादेव देवादि देव जिन्हें कहा जाता है, वो ये ऐसी व्यसन की चीजें कैसे लेंगे। ये गलत लिख दी, और मुझे लगता है ऐसे कुछ ऋषियों ने लिख दी जो खुद इसके आदि हो गए होंगे। तो सोचा जोड़ दो उससे ही, तो हम भी सुरक्षित रह जाएंगे, कोई बात नहीं, हमारे महादेव जी भी तो पीते खाते थे, हम भी पीते खाते हैं, तो कोई हर्जा नहीं। लेकिन बात ये ईश्वरीय नशे की है सच्चे अर्थों में। शंकर जी को बहुत ज्यादा ईश्वरीय खुमारी थी, मगन थे वो। देखो उन्हें जब ध्यान अवस्था में दिखाया जाता है, उनका चेहरा देखो, दिव्यता और तेज से भरपूर
जी।
मगन अवस्था। तो ऐसे योगी भला इन व्यसनों का सेवन कैसे करेंगे? योगी माना निर्व्यसनी, संपूर्ण निर्विकारी, यही तो योगी की पहचान है। तो लोगों ने फॉलो कर लिया गलत, और सोचने लगे हम भी उसको फॉलो करके ये खाएं पिए तो शायद हम भी उसके दर्शन कर लेंगे, उसके समान बन जाएंगे। परंतु ये सब गलत है, न महादेव जी इनका सेवन करते थे और न हमारे भक्तों को ही इनका सेवन करना चाहिए।
बिल्कुल, क्योंकि ये शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाले हैं, और साथ ही यदि हम उनके साथ इसे जोड़ करके देखते हैं तो आध्यात्मिक अर्थ में जोड़ना होगा कि ये वास्तव में एक रूहानी नशे की बात है, परमात्मा की स्मृति की बात है। उसमें जो आनंद आता है, उस आनंद में शायद शंकर जी मग्न रहा करते थे। उनकी कुछ कई प्रकार की चीजें दिखाई जाती हैं ब्रता जी, जो सांप है गले में वो माला है, या चंद्र जो है उनके ललाट पे शोभित हो रहा है, या उन्होंने जैसे अमृत की या फिर शेर की कई खाल पे बैठे हुए हैं। तो ये क्या, ये सब चीजें भी कुछ आध्यात्मिक भाव लिए हुए?
बिल्कुल, देखिए वैसे तो किसी के गले में सांप पड़े हों ये बहुत प्रैक्टिकल तो है
नहीं लगता।
गंगा जटाओं से निकल रही
जी,
हो
जी,
ये भी कोई प्रैक्टिकल नजर आने वाली बात नहीं है। यहाँ चंद्रमा हो ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। इन सब के आध्यात्मिक रहस्य है, यानी वो ऐसे तपस्वी थे, ऐसे महान योगी थे जिन्होंने विकारों रूपी सर्पों को अपने वश कर लिया था, यानी जो जहरीले हैं उनको अपने गले की माला बना लिया, सुंदरता बना लिया, वो उनका श्रृंगार बन गए। जो आज तक विकृतियां थी उन सबको नष्ट कर दी। इसी से जुड़ी हुई वो बात भी है कि फिर भला वो व्यसन कैसे करेंगे, भांग धतूरा कैसे करें, जिन्होंने काम को जीत लिया हो,
कामारी
उनको कहते हैं, उनको क्रोध कहाँ आएगा, उनमें और व्यसन कहाँ रहेंगे। उनके परिवार को भी दिखाया गया है, वो अपने परिवार के प्रति अनासक्त दिखाए गए, बिल्कुल उपराम दिखाए गए। अभी तो भारत में महादेव का सीरियल भी चला, लोगों ने बहुत कुछ उनको देखा और बहुत कुछ सीखा, उनकी दिव्यता से बहुत प्रेरणाएं भी ली। तो वास्तव में गले में सांप, माना मनोविकारों पर पूरा कंट्रोल, वो उनकी सुरक्षा करने लगे हैं। अब यहाँ चंद्रमाना बुद्धि, दिमाग बिल्कुल शीतल हो गया है, गंगा निकल रही है, इसका आध्यात्मिक रहस्य यही है कि निरंतर उनके मन में उनके मुख पर ज्ञान ही निकलता रहता था, ज्ञान गंगा बहती थी उनकी बुद्धि से उनके मुख से, ये इसके रहस्य हैं। बिल्कुल अशरीरी बन गए, इसलिए वस्त्रहीन दिखाते हैं, वही वस्त्र नहीं पहने हुए निर्भय हो गए। सांप का वो दिखाते हैं महापुरुष सन्यासियों को, मुनियों को लपेटे हुए, भभूत लपेटी हुई है, माना बिल्कुल देह भान से मुक्त हो गए, देह का कोई आकर्षण उनको नहीं रहा। और एक तपस्वी की, एक योगी की यही सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है कि वो देह भान से मुक्त होकर आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए, मनोविकारों पर उसका अधिकार हो जाए, मन और बुद्धि में उसके संपूर्ण ज्ञान जैसे छलकता रहे, ज्ञान स्वरूप वो व्यक्ति बन जाए, और चित्त उसका शीतल हो जाए, मन बिल्कुल शीतल हो जाए, और वो परमात्म स्वरूप में मगन हो जाए। तो ये शंकर की सारी यादगारें हैं। ऐसी तपस्या हम सबको भी करनी है शिवरात्रि पर। वास्तव में शिव की ओर से यही संदेश है, महादेव जी को दिखाते हैं वैसे श्रेष्ठ तपस्वी तुम भी बनो।
बिल्कुल व्रता जी, आज के दिन विशेष करके व्रत भी रखते हैं लोग, तो एक दिन तो व्रत रख लेना, अन्न ग्रहण नहीं करना, ये तो सहज है, लेकिन वास्तव में आज किन बातों का व्रत लें?
बहुत अच्छी बात है, आज अनेक लोगों ने व्रत रखा होगा, विशेष रूप से माताएं बहनें तो व्रत रखने में बहुत ही परफेक्ट होती हैं, तो सबने आज व्रत रखा है। लेकिन ये व्रत एक दिन का होता है और कुछ न कुछ शारीरिक शुद्धि का लाभ इससे अवश्य होता है, परंतु हम ऐसा व्रत रख लें जिससे हमारी वृत्तियां बदल जाएं, हम अपने अंदर पवित्रता का व्रत ले लें, हमारी दृष्टि बदल जाए, हम व्रत ले लें आज से हम सभी को सुख देंगे, हमारे मुख से जरा भी कटु वचन नहीं निकलेगा, हम व्रत ले लें, आज से हम ये पाप कर्म नहीं करेंगे, हम पुण्य आत्मा बनकर रहेंगे, हम व्रत ले लें, हमारे अंदर ये व्यसन है, आज से ऊपर इसको बलिहार कर देते हैं, ये हमारा आजीवन व्रत रहेगा। और ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने तो ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, आजीवन व्रत ले लिया है, भगवान की आज्ञा से उन्होंने पवित्रता का व्रत लिया है, और इसलिए लिया है कि सारी धरा पर पवित्रता का, सुख शांति का पुनः साम्राज्य स्थापित करना है। तो ऐसे ही हम चाहेंगे सभी भक्त जो आज शिवालयों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने आज अन्न का व्रत रखा है, वो आज के इस सुंदर दिवस पर किसी एक चीज का व्रत अवश्य लें। चाहे कोई कहे आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, मेरा व्रत होगा, आज से मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, मेरा व्रत होगा, आज से मैं अपनी सभी हिंसक वृत्तियों को समाप्त कर रहा हूं, आज से मेरा ये व्रत होगा, ऐसा जीवन परिवर्तन करने वाला व्रत। तो ये व्रत वास्तव में शिव को बहुत पसंद होगा और तभी शिव प्रसन्न होकर आ जाएंगे उनके पास। कोई भी मान्यता जो भक्ति में प्रचलित है वो अर्थहीन तो नहीं है, उसके पीछे कुछ अर्थ तो अवश्य है। तो भगवान इस धरा पर आए अवश्य थे, उन्होंने सबको दर्शन दिए थे, उन्होंने सबको सत्य ज्ञान दिया था, तो आज भी वो मनुष्य के सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं अंकित है कि प्रभु जी आएंगे अवश्य, हमारी जन्म जन्म की मिलन की प्यास बुझाएंगे अवश्य, ये संकल्प रहता है। तो वास्तव में भगवान तो आ चुके हैं और वो अपने भक्तों से मिलन कर रहे हैं, न केवल मिलन कर रहे हैं बल्कि उनका ज्ञान और योग से श्रृंगार कर रहे हैं। जिन्होंने हजारों साल से उसे प्यार किया, उस प्यार के रिटर्न में वो प्यार के सागर अपना संपूर्ण प्यार लुटा रहे हैं, तो मिलन का समय है। तो बस बात यही है कि हमें आज रात को जागने की बात नहीं, जगना है, अज्ञान की नींद को छोड़ना है।
मतलब एक रात जागने की बात नहीं है, वास्तव में अज्ञान से जागने
की बात है। भले रात को सोएं लेकिन अज्ञान से जग जाएं, ज्ञान के प्रकाश में हम आ जाएं, हम स्वयं को पहचान लें, अपने परम पिता शिव को पहचान लें, तो ये मिलन होगा। अब बेचारे सारी रात भक्त बैठे रहते हैं, सोते भी रहते हैं मंदिरों में, इसलिए भांग वांग पी लेते हैं कि जगते रहेंगे, कुछ और करते रहते हैं, झांझ बजाएंगे, कुछ गीत कीर्तन चलेगा, भाई सब जगते रहे शिव आएगा। पर किसी ने आज तक बताया तो नहीं कि शिव जी आ रहे थे, हमें तो दर्शन हुए, पार्वती भी साथ थी, गणेश और कार्तिकेय भी साथ थे, हम तो धन्य धन्य हुए, कोई तो आज तक सुना नहीं। सो सा के इंतजार करके फिर अपने काम धंधे में लोग लग जाते हैं, लेकिन सचमुच शिव आया हुआ है। अगर उसके मिलन का सुख चाहिए तो सबको बहुत वेलकम है, और हम इस शिवरात्रि पर सभी को यही शुभ संदेश देने जा रहे हैं। हमारी महाशिवरात्रि शिव जयंती पर हमारी सबके लिए शुभ भावनाएं हैं कि सभी भक्तों का अपने इष्ट से, और हम कहेंगे अपने परम पिता से मिलन हो जाए, तो उनकी भक्ति भी पूर्ण हो, उनका जीवन तृप्त हो, आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो और भक्ति को भी बल मिले।
परमात्मा आ गए हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, सभी को वरदान दे रहे हैं। तो जो इतने सारे शिव भक्त हैं, हमारे दर्शक सुन रहे हैं, तो परमात्मा से कहाँ आकर मिलें और कैसे उनका वरदान प्राप्त करें,
ये प्रश्न भी मनुष्य के मन में उठने स्वाभाविक है। और हमारे सभी सेवा केंद्रों की ओर से आज के दिन भी हजारों प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, हजारों, सैकड़ों नहीं, हजारों, जहां उस गांव के, टाउन के या शहर के बहुत सारे लोगों को बुलाया जाएगा और उन्हें शिव का ज्ञान भी दिया जाएगा, शिव का संदेश भी दिया जाएगा। तो अब सबको हम भी ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत में भी आबू परमात्मा की जन्मभूमि कर्म भूमि है, उसने अपनी कर्म भूमि बना लिया है आबू को। आबू है राजस्थान में, माउंट आबू जो बहुत पहले से ही एक पवित्र स्थल माना जाता है, जहाँ के लिए दिखाया है, अनेक ऋषियों ने यहाँ पर तपस्या की, स्वामी विवेकानंद भी यहाँ पर आए थे, बहुत समय रहे थे, और ऐसे बहुत सारे तपस्वी यहाँ पर रहे। हम भी जब यहाँ आए तो हमने देखा अब से 45 वर्ष पहले कि ये स्थान संसार के और स्थानों से बिल्कुल भिन्न है, यहाँ चोरी चकारी नहीं होती, यहाँ बहुत पवित्र पवित्र वाइब्रेशंस है, यहाँ झगड़े नहीं होते, यहाँ पुलिस को कोई काम नहीं रहता। तब ऐसा सुंदर माहौल था, अगर कोई यात्री यहाँ आया है तो अपना सामान किसी भी दुकान के आगे रख के चला जाता था कि भाई मैं आता हूँ जरा घूम के, दुकानदार उसका सामान वहां रख लेता था, शाम को आके वो अपना सामान उठा लेता था। ऐसी एक स्वच्छता, ऐसी श्रेष्ठता इस स्थान पर थी, है अब भी। तो भगवान ने इसे ही अपना केंद्र बनाया और यहां से सारे संसार में अपनी शाखाएं खुलवाई। तो वास्तव में जिनको प्रभु मिलन का ये सुख लेना है उसका स्थान है माउंट आबू, लेकिन उससे पहले उनको वहीं पर उसका सत्य ज्ञान लेना होता है।
आज के शुभ दिवस पे जरूर ये बात हम जानना चाहेंगे, कैसे हम भगवान को खुश कर लें, क्या करें जो खुश करके वो अपने होके वो सारे अपने वरदान हमारी सारी झोली भर दें।
भक्त भी ये सोचते हैं, कहते तो उसे भोलेनाथ हैं और तुरंत राजी होने वाला, पर राजी हो तो नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ तो कहीं है। तो वास्तव में वो केवल भक्ति से राजी नहीं होता। देखिए भक्ति में भी आज शुद्धि नहीं रही है, निष्काम भाव नहीं रहा है, सच्चा प्रेम नहीं रहा है, उसको भी एक व्यापार बना लिया ना लोगों ने। चलो भाई आज करना है, काम निभाने वाली बात कर दी, आज ये भी पूर्ति कर देनी है हमें, नहीं तो लोग हमें नास्तिक मानेंगे, हम भी व्रत रख लें, हम भी शिवालय में चले जाएं। लेकिन भगवान राजी उन पर होता है जो सच्चे हैं, भगवान राजी उन पर होता है जो दूसरों को सुख देते हैं, भगवान राजी उन पर होता है जो पुण्य कर्म करते हैं, ईमानदार हैं, भगवान राजी उन पर होता है जो उसको सच्चे दिल से प्यार करते हैं। भगवान उन पे राजी नहीं होता जो बहुत पैसा तो खर्च उसके लिए कर दें लेकिन अंदर की भावनाओं में सच्चा प्रेम न समाया हो। हम तो इस टाइम देखते हैं भगवान तो हम पे राजी हुआ है, शिव हम पे राजी हो गए हैं, और हम देखते हैं वो क्यों हम पे राजी हुआ, जन्म जन्म हमने उसकी भक्ति की थी, उस पर अपना प्यार अर्पित किया था, अब उसके आदेश अनुसार अपनी बुराइयां उस पर अर्पित कर दी, उसने जो कहा उन चीजों का व्रत ले लिया, उसने जो कहा उनको जीवन में करने लगे तो प्रसन्न हो गया। और हम देख रहे हैं कि भोलानाथ प्रसन्न होकर अपनी शक्तियां भी हमें देते हैं, अपने वरदान भी हमें देते हैं। किसी को उसने वरदान दिया है श्रेष्ठ योगी भाव, तो किसी को वरदान दिया है संपूर्ण पवित्र भाव, किसी को वरदान दिया है सफलता मूर्त भाव, तो किसी को वरदान दिया है विघ्न विनाशक भाव, ये अनेक वरदान। तो प्यार भी बांटा और अपना हाथ सिर पर रखकर वरदान भी दिए।
बिल्कुल, तो मतलब यदि हम परमात्मा की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, अपने अंदर की विषय वासनाओं को उसके ऊपर अर्पित करते हैं, जैसे कि आज हम अर्पित करते हैं आग का फूल या धतूरा आदि, वास्तव में अपने विषय विकारों को अर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से भोलेनाथ प्रसन्न होकर आज हमारी झोली भर देंगे। हम चाहेंगे कि सभी दर्शक अपनी झोली आज के दिन जरूर भर लें। चलते चलते व्रता जी, विशेष करके प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, चूंकि ये विश्वविद्यालय सारे संसार में फैला हुआ है और इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाता है, तो विद्यालय की ओर से, दादियों की ओर से आप सभी दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
बिल्कुल, हम अपने सभी प्रिय दर्शकों को, जो उनमें से कई बहुत अच्छे भक्त भी हैं, किसी ने बहुत अच्छा ज्ञान भी ले लिया है, ये कहना चाहेंगे कि प्रभु मिलन का ये समय चल रहा है, अब उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं, अब तो उसके पास जाने की आवश्यकता है। वो भारत भूमि पर आबू पर विशेष रूप से आकर अपना दिव्य कार्य करते हैं, उन्हें पहचाने, उनसे मिलन के लिए आगे आए और उनका आदेश है, बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब तुम्हें ये सब कुछ छोड़कर वापिस अपने धाम चलना है, इसलिए बी होली एंड बी राजयोगी, पवित्र बनो और मेरे से अपना बुद्धि योग लगाओ, अपने चित्त को स्वच्छ करो, अपने काम क्रोध लो मोहंकार को विदाई दे दो अब। तो हमारा यही संदेश है ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से कि सभी का परमात्मा मिलन हो जाए, सभी उसके द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको लेकर सदगति का मार्ग अपनाएं, अपने चित्त को प्रकाशित करें और इन व्यसनों को छोड़कर, इन बुराइयों को परमात्मा शिव पर बलिहार करके अपने को उसके जैसा पवित्र बनाए, निर्मल बनाए, तो वो राजी ही राजी है और वो राजी होकर सभी को अनेक वरदान दे देगा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रता जी, बहुत सुंदर संदेश आपने हमें सभी दर्शकों को हमारे दिए हुए हैं, आपका बहुत 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 शुक्रिया। हमें अपनी बुराइयों को परमात्मा के ऊपर अर्पित करना है, तभी वो भोलेनाथ हमसे प्रसन्न होंगे और हमें प्रसन्न होकर ढेरों ढेर वरदान देंगे। और ये भी एक सुंदर खुशखबरी है हम सबके लिए कि अब वो इस धरा पर आकर अपना दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। तो भक्ति तो हमने बहुत की, आए अब उस परम सत्ता से, उस परम पिता परमात्मा शिव से मिलन मनाएं और मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करें। नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कठिनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहां।